थोड़ा आवाज चेक कर रहे यार, जरूर चेक करो तो स्थिति आती है। बेस कम रखो, मास्टर से।
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वकारुणं। अर्हन्त सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ से प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं। दिन को स्वरूप जान राग से बड़ी जो भक्ति काय को न माने स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तुम से काज सब राज भय कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है तो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। श्री जिनवर की वंदना करूं सहज निष्काम, पक्षातिक्रांत परमात्मा पाऊं मंगल धाम। मैं प्रमाण से जान कर सत तत्व का मर्म, रत्नात्रय निधि प्राप्त कर कते कर्म दुष्कर्म। प्रवचनकार परमागम शास्त्र के परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा आचार्य देव ने की है, जिसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा अपन ने दोपहर में चर्चा की है। वास्तव में भगवान आत्मा में जिस प्रकार अनंत शक्तियां उसकी निर्मल पर्याय में उछलती हैं, जिनका वर्णन समय काल परिशिष्ट में आया है, उसी तरह भगवान आत्मा में अनंत धर्म भी विद्यमान रहते। यद्यपि उनमें उत्पाद रूप कोई परिणमन नहीं होता, लेकिन जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उस अपेक्षा से द्रव्य जैसा ही रहता। जैसे मान लीजिए नित्य है तो द्रव्य स्वभाव में नित्यता रहती है, अनित्य है तो पर्याय स्वभाव में अनित्यता रहती है। तो ऐसा अनंत धर्मात्मक एक धर्मी जो चैतन्य से व्याप्त है, जिसके कण कण में, प्रदेश प्रदेश में, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक शक्ति में चैतन्य व्याप्त है, इसलिए वह सत्ज्ञान के द्वारा अनुभव में आता है। इसकी चर्चा अपन दोपहर में कर चुके हैं। थोड़ा गुण शक्ति और स्वभाव और धर्म पर भी अपन ने चर्चा की थी। अभी पहले और दूसरे नंबर के जो धर्म हैं, 318 पेज पर उसकी चर्चा आई है। थोड़ा अपन उस पर विचार करके, उनका नाम है द्रव्य नय और पर्याय नय। अब देखो आप द्रव्य शब्द के कितने प्रयोग होते हैं, ये अगर अपन नहीं समझे तो वक्ता किसी अपेक्षा से बोलेगा और हम किसी अपेक्षा से समझेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए आत्मा का स्वरूप जानने के लिए भी और जिन्माने का मर्म समझने के लिए, अनुभूति के लिए, ये सब जानना आवश्यक है। अनंत धर्मात्मक आत्म द्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है और पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञान आदि मात्र है। क्या मतलब है इसका? जब अपन द्रव्य बोलते हैं तो जो अपने गुणों और पर्यायों में व्याप्त रहता फैलता है उसमें पसरा हुआ रहता है, ऐसा जो वस्तु का एक अंश है उस अंश का नाम द्रव्य है। एक तरफ तो द्रव्य में पर्याय मई संपूर्ण वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं, दूसरी तरफ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो अखंडता है उसको भी द्रव्य कहते हैं, तीसरी तरफ एक व्याय भाव है उसको भी द्रव्य कहते हैं दृष्टि का विषय, और यहाँ जो वो पर्याय में व्याप्त रहता है। जैसे मोतियों के हार में धागा व्याप्त रहता है, एक अपेक्षा देखो तो हार जो है मोतियों की माला, धागे की तरफ से देखो तो वो एक सूत्र मात्र है, धागा है, और मोतियों की तरफ से देखो तो उसमें मोती है। देखिए अपने पास अभी जैसा कि मैंने दोपहर में कहा था, पहले इस पर अपन बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जब प्रवचन साल का अपन ने आद्यो पांच स्वाध्याय किया था दोनों टीकाओं के माध्यम से। अभी तो आपको एक सैंपल दिखाना है सर कि क्या क्या खजाना भरा हुआ है समय साल के परिशिष्ट में और प्रवचन साल के परिशिष्ट में। लोक व्यवहार में भी ये पद्धति होती है। मैं पूछता हूँ एक परिवार है फैमिली है क्या होती है दिखती है कहीं है पकड़ में आती है, बोल भाई क्यों फैमिली क्या है, इसके जो मेंबर्स हैं सदस्य उनके भीतर एकत्व की अनुभूति का नाम परिवार। किसी प्रसंग में हमने समाजशास्त्र तो नहीं पढ़ाने थे, हमारे कोर्स में तो अर्थशास्त्र था जिसे मैं सोमदर से प्रभावित होने के कारण अनर्थ शास्त्र बोला करता था। क्योंकि अर्थशास्त्र का ये सिद्धांत है सीमित साधनों से ज्यादा सुख कैसे प्राप्त किया जाए, पर वस्तुओं में से सुख प्राप्त करने की कला, उसका नाम अर्थशास्त्र। जब मैंने सत्येन में एडमिशन लिया तो उस समय गुरुदेव के परिचय में आ चुका था, इसलिए मैं कहता था कि ये तो अनर्थ शास्त्र है वास्तव में। खैर समाज क्या चीज होती बोलो आप, समाज अपने मुमुक्ष समाज क्या है, मुमुक्ष समाज कहाँ रहती है, सोनभद्र रहती है, देवलाली रहती है, इंदौर रहती है, हनुमान जी जाते मिले समाज सब तो मिली, उष्मा प्रकाशक पढ़ने में मिली। देखिए एक संस्कृति एक अनुशासन एक सिद्धांत एक आस्था, बहुत सारे व्यक्तियों में अगर एक संस्कृति हो एक आस्था हो एक सिद्धांत हो तो उन व्यक्तियों के समूह का नाम समाज होता है। पशुओं में ऐसी कोई एकत्री की अनुभूति नहीं होती, इसलिए पशु वो व्यक्ति होता है, एक सिंगल यूनिट एक ही है, उनका कोई समाज नहीं है परिवार नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में वो एकत्र की अनुभूति नहीं है। किसी भी को मानने लगा है फील करना चाहिए ना स्वयं, लेकिन मनुष्यों में है ऐसा, ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, मुमुक्ष समाज है, जैन समाज है, दिगंबर समाज है, बहुत सारे समाज जातियों के आधार पर गोत्र के आधार पर कच्ची समाज है, गुजराती समाज तो बहुत प्रसिद्ध है। समझ में आया, जगह जगह जो है वो गुजराती समाज के भवन हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके रीति रिवाज हैं। तो जिस तरह से अनेक व्यक्तियों में एक एकता की अनुभूति कराने वाला कोई तत्व होता है, उसी तरह से अनंत गुणों में और उसके परिणाम में ये किसके हैं ज्ञान किसका, दर्शन किसका, चारित्र किसका, वीर्य किसका, ये बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा ये अवस्थाएं किसकी, जिसकी वो द्रव्य ऐसे है। बहुत सुंदर परिभाषा है। और उस द्रव्य अंश को जानने वाला ज्ञान, उसका नाम है द्रव्य नय। नय का काम जानना, और जो वस्तु में अंश है वो ज्ञात होता है, जानने में आता है। मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे वस्त्र में अनेक ताने बाने रंग रूप आकार आदि होते हैं, परंतु उन्हें गौण करके मात्र वस्त्र को जानना वो द्रव्य नहीं। ऐसा व्यवहार भी होता है उसमें, मनुष्यों में कपड़ा खरीदा जाता है, कपड़ा बेचा जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। ये जो जैसे कपड़ा है सूती, इसके अंदर जो धागे हैं, जैसे आड़ा होता है तो ताना बोलते हैं, खड़ा होता है तो बाना बोलते हैं, सब ताना बाना होता है ना, है तो कोई ये कहता है कि हम ताना बाना पहने जबकि कपड़े में उसके अलावा और क्या होता है तो भी कहीं कोई धागा पड़ा हो, कहीं कोई धागा पड़ा हो तो उसको कपड़ा नहीं बोला जाएगा, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से बुने हुए हो गए तो उनको कपड़ा बोला जाता है। ऐसे द्रव्य का स्वरूप है भैया, है कोई गुण इधर है, कोई गुण उधर है, कोई किसी में है, ऐसे बिखरे हुए नहीं रहते, बल्कि एक सत्ता से अनुसूत, एक सत्ता से बंधे हुए रहते, इसलिए उस सत्ता का नाम द्रव्य होता है। अगर मान लो उसमें धागे नहीं हुए तो कपड़े का क्या स्वरूप होगा? भारत में अगर महाराष्ट्र भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भारत का क्या होगा? तो है भारत ही नहीं रहेगा। इसलिए अभेद के समान भेद भी वस्तु का उतना ही महत्वपूर्ण धर्म है, स्वभाव है, योग्यता है। वैसे एक आध उदाहरण दिया होगा मैंने कि किसी एक हाथी की टीम का वो होना था सिलेक्शन, तो उसमें वो बहुत सारे खिलाड़ी आए थे, तो कोच जो था वो उनको अपना परिचय दे रहे थे। कोच को, मेरा नाम ये है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ऐसा। वो इंडिया की टीम बनानी थी तो कोच बोलता है कोई भारत का है कि नहीं है, ऐसा है भैया। ऐसे ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, सब गुण अगर झगड़ा करने लगे और अलग अलग हो जाएं, तो फिर द्रव्य का क्या होगा? ये देखने लायक बात है। उसी प्रकार आत्मा में मात्र चित्त स्वभाव को जानना द्रव्य में है, चेतन चेतन स्वभाव है। यहाँ पर गुरुदेव ने खुलासा भी किया है, द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य वो थोड़ा अलग है, और ये द्रव्य नाम का एक धर्म है। वस्तु के अनंत धर्मों में, अनंत स्वभावों में, जो सब गुण पर्यायों में फैल करके रहे, व्याप्त होकर के रहे, एक सत्ता, उसका नाम द्रव्य है। गुण पर्याय में व्याप्त होने वाली, ये समझने की बात है। जरा शरीर कैसे कहते, ये कान है, कान है, ये आँख है, ये बाल है, ये नाक है, और सब अंग अलग अलग हैं, हैं तो शरीर कहाँ है फिर बोलो? तो इन सब में जो एकत्र है उसका नाम शरीर है, ऐसे लगा ना। और ज्ञान दर्शन आदि भेदों को जानना ये पर्याय नहीं का काम, मतलब भेद ही वस्तु में ज्ञान दर्शन अगर नहीं हो तो द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य नहीं होंगे तो गुण भी नहीं रहेंगे। ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है, द्रव्य गुण पर्याय। आत्मा में द्रव्य नाम का एक धर्म है, इसमें दिखता है ना पर्दे पर, आत्मा में द्रव्य नाम का एक धर्म है, जिसका स्वरूप चैतन्य मात्र है अथवा द्रव्य धर्म की अपेक्षा आत्मा का चैतन्य स्वभाव उसके संपूर्ण गुण पर्यायों में व्याप्त है। देखो चैतन्य भी एक गुण है, लेकिन चैतन्य को सारे द्रव्य का आरोप करके उस द्रव्य को चैतन्य मात्र कहा जाता है। ये भी जरा समझने की बात है। गुण पर द्रव्य का आरोप ऐसी भी पद्धति है और पर्याय धर्म की अपेक्षा उसमें ज्ञान दर्शन आदि भेद रूप होने की योग्यता है। बस ये द्रव्य पर्याय की चर्चा जो अभी मैंने की तीसरी पॉइंट में तो वही है। देखो द्रव्यार्थिक नये पर्यायार्थिक नये और द्रव्य नये और पर्याय नये, इनमें अंतर है। और ये गुरुदेव के जो 47 नयों पर व्याख्यान है, आप जानते होंगे कौन सी पुस्तक है वो, नये प्रज्ञापन। नये प्रज्ञापन में 47 नयों के व्याख्यान संकलित हैं। उसमें ये खुलासा गुरुदेव ने किया है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ। ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में कोई पंडित ऐसा नहीं होगा जिनकी फर्क निकाल सके। क्या फर्क है? द्रव्यार्थिक नये का विषय संपूर्ण सामान्य स्वभाव रूप अभेद है। उसमें द्रव्य की अखंडता, क्षेत्र की अखंडता, काल की अखंडता, भाव की अखंडता, परिचारण की अखंडता, द्रव्य गुण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद भी नहीं करना। ऐसा देखो वस्तु में मेन दो अपन ने समझ लो उसके हिस्से कल्पना की है या सोचे जाने, एक सामान्य एक विशेष है। तो जो सामान्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक में, तो उसमें अनंत गुण अनंत पर्याय सब उसमें समा गए, समझ में आया। और ये वाला जो द्रव्य है इसमें गुण पर्याय समाये नहीं है रजनी भाई, ये केवल गुण पर्यायों में फैलने की योग्यता एक अंश है। देखो वो द्रव्य तो वस्तु का एक अभेद स्वरूप है, समझ लो वो द्रव्यार्थिक नये का विषय। और ये जो द्रव्य है ये अनंत धर्मों में एक धर्म मात्र है, वो एक धर्म नहीं है, वो धर्म ही है। क्या बात समझ में आई? थोड़ी बहुत नहीं आए तो सुनना धैर्य से, अभी चर्चा होगी। गुरुदेव कहते थे ना धात्री में पूछना। देखो अंतर समझो, द्रव्यार्थिक नये के विषय रूप द्रव्य में वो 10 तरह के द्रव्यार्थिक नये आ जाएंगे। ख्याल में आए ना, एक अशुद्ध को अलग कर दो अपन, एक भेद कल्पना निरपेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ये सब आ जाए द्रव्यार्थिक नये के विषय। इसमें अनंत धर्मों का में केवल एक धर्म, कैसा है वो धर्म? धर्म माने योग्यता, धर्म माने स्वभाव। कैसी योग्यता है? जो अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने की जो वस्तु की योग्यता है उस योग्यता का नाम द्रव्य धर्म है। अंश है वो, अंशी है वो, द्रव्यार्थिक नये का विषय धर्मी है, अंशी है। अरे शुद्ध द्रव्यार्थिक नये का विषय तो दृष्टि का विषय बनता है, परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नये। और वास्तव में ये तो भेद करके इसको देखो तो ये पर्यायार्थिक नये का विषय बनेगा। अनंत धर्मों से एक धर्म है ना, ये तो है इसका नाम द्रव्य, लेकिन विषय बना किसका? पर्यायार्थिक नये का। अंश होने से पर्यायार्थिक नये का विषय बना। थोड़ा सूक्ष्म हो गया भगवान जी, होने दो, देवलाली में नहीं होगा तो कहाँ होगा है ना। एक बार ऐसी कुछ सूक्ष्म बात आई तो गुरुदेव श्री ने ऐसा फरमाया, मामा के घर ब्याह हो गए और माँ पड़ोस में आ गए। क्या मामा के घर में मामे छोटे मामा की शादी है तो माँ गई अपने बच्चों को भी ले गई और खुद ही परोस रही है तो क्या कमी रखेगी वो है। तो देवलाली मामा का घर है અમોના પરોસ રહી છે. અપન તો પરોસને વાલે ખાઈ બનાને વાલે તો સબ બના ગુરુદેવને તો પકા પકાયા હલવા તૈયાર કરી દીયા પ્રેમ સોલાંગીને. દેખો દ્રવ્યાભિનય કા વિષય સંપૂર્ણ સામાન્ય સ્વભાવ રૂપ અભેદ હૈ, જબકિ દ્રવ્ય નય કા વિષય અનંત ધર્મો મે સે એક ધર્મ યે હૈ. ઇસમે લિખા હૈ, ઇસમે પર્દે પે હૈ, પર્દે કે પરમાણુ ભી ઉસ યોગ્યતા રૂપ પરિણમિત હો રહે હૈ, વો અક્ષર રૂપ હૈ, બિના કોઈ પેન્ટ કે, બિના કોઈ કલર કે, બિના કોઈ ચીજ કે, કેવલ કેવલ ઇમેજ આ રહી હૈ, છબી છબી બન રહી હૈ. इसी प्रकार सुनना पर्यायार्थिक नय का विषय वस्तु का विशेष स्वभाव है, जबकि पर्याय नय का विषय भेद रूप रहने की एक योग्यता मात्र है. जैसे वो द्रव्य धर्म है वैसे पर्याय नाम का धर्म है. वो तो ज्ञान ने भी वही धर्म का नाम से नय का भी वही नाम ले लिया. जो नय का नाम है वो उसके विषय का नाम, ऐसा समझ. और देखो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत प्रमाण की विषय भूत संपूर्ण वस्तु है. प्रमाण द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक बोलो सामान्य विशेषात्मक भेदा भेदात्मक नित्यानित्यात्मक, समझ में आया, तो उसमें संपूर्ण वस्तु आ जाती है. प्रमाण के विषय भूत पूरा पदार्थ आ गया. लेकिन यहाँ द्रव्य नय और पर्याय नय ऐसे दोनों को एक साथ बनाओ तो दो ही नए आएंगे, पूरी वस्तु पकड़ में नहीं आएगी. थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन आनंददायक. अब नीचे और खुलासा किया है, ये दोनों नए वस्तु की अभेद और भेद रूप एक एक योग्यता को बताते. जरा ध्यान दीजिए, अभेद शब्द प्राय अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, जबकि उसके कुछ प्रयोग अपन अभी चर्चा करते हैं. दिख रहा है इसमें जनवाई आ ए अभेद अनुभूति. देखो अनुभूति को भी अभेद रूप बोलते, ये तो पर्याय है, वो भी एक अंश है. बात समझ में आई? पर्याय में देखो जहाँ ध्यान ज्यादा भेद का भी विकल्प नहीं होता, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति को अभेद अनुभूति कहते हैं. ठीक. फिर द्रव्यार्थिक नय का या शुद्ध नय का विषय, ये दूसरे नंबर का अभेद. पहले नंबर का अभेद पर्याय है, वो संबल तत्व है वो मोक्ष मार्ग है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक की विशेषतया उत्पत्ति के समय की अनुभूति की बात है, अभेद अनुभूति. और वैसे भी परिणति में निरंतर वो बनी रहने वाली अनुभूति है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग है क्या, वो पर्याय है, हैं? और ये द्रव्यार्थिक नय का विषय, इसमें भेदों को गौण करके अभेद वस्तु को विषय बनाया जाता है. ये द्रव्य है, द्रव्यार्थिक नय का विषय रूप अभेद वो द्रव्य है. अरविंद लालचंद भाई इसके लिए बहुत बढ़िया शब्द बोलते थे, एक नवा अभेद और एक जूना अभेद. जो शुद्ध नय का विषय भूत अभेद है वो अनादि निधन है, वो शुद्ध जीव तत्व है, और जो पर्याय उसमें अंतर्मुख होकर एकाकार होकर मैं ज्ञायक हूँ ऐसी अनुभूति करती है, ये समझ लीजिए नया अभेद प्रकट हुआ. ये पर्याय में अभेद अनुभूति प्रकट है. अभेद के लक्ष्य से वर्णमन में भी ज्ञान में भी श्रद्धा में भी अभेद बना आ गया, यानी भेद का विकल्प नहीं जा. तीसरा द्रव्य नय का विषय समस्त भेदों में व्याप्त रहने की एक योग्यता रूप अभेद धर्म ये आया. ये जो अभी चल रहा है, ये अभी जो चल रहा है ना द्रव्य नय, ये आया समस्त भेदों में व्याप्त रहने की एक योग्यता रूप अभेद धर्म. घर में स्वभाव है, हैं? अभी तो भैया हिनागम तो बहुत हजार चीज है, इसलिए बार बार याद आती है श्री के आम बात कहने पड़े एक पर भाग्यशाली है कहा ये बात सुनने में काम भोग बंदे की कथा सब जीवों को सुलभ है, श्रुत परिचित है, अंगूठ है, सुनाने वाले भी बहुत हैं, साधन बहुत हैं, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक साधन विकसित हुए हैं, ये कोई आत्मा बताने के लिए हुए त्रिकाली ध्रुव है ये सारे के सारे राग द्वेष बढ़ाने वाले, विषय कषाय बढ़ाने वाले किसके हैं। अभी एक और अभेद, चार तरह के अभेद आए, एक अनुभूति का, एक द्रव्याचिन्हय का, एक द्रव्य का, और चौथा आएगा अभिकल्पनय का विषय, ये आएगा 47 नयों में 11वां अभिकल्पनय का विषय भूत अभिकल्प धर्म भी वस्तु के अखंड स्वभाव को बताता है, उसमें भेद होने पर भी अभेदपना है, और ये जो है ये गुण पर्यायों में व्याप्तपना है, थोड़ा एंगल चेंज हो जाता है बस बाकी वस्तु से जो है जो है। तो ये पहले प्रथम दो नयों का मुझे कहने का विकल्प था, बाकी जैसा कि मैंने बताया ये सात नए जो हैं इसके बाद देखो अपन वही लेते हैं दसवां और ग्यारहवां है पेज नंबर 326 सप्तभंगी हो गया, तो दसवें और ग्यारहवें में विकल्प और अविकल्प नए, और फिर बारहवें से पंद्रहवां तक नाम स्थापना द्रव्य और भाव ये सरल है, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है दोपहर में थोड़ा मैंने संकेत इनका कर दिया था। देखो भाई विकल्प नए और अविकल्प नए, अपन लोग भी विकल्प शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष को विकल्प कहते, यदि निर्विकल्प अनुभूति की बात होती है ना। एक और मार्मिक बात कहता हूँ, जैसे अपन शुद्धोपयोग शब्द का प्रयोग करते तो अपन सबके दिमाग में है शुद्धोपयोग माने वो सातवें गुण स्थान में जो उपयोग स्व सन्मुख होता है और कोई भी भेद का विकल्प नहीं होता, और एक चैतन्य की अनुभूति माँ भले वो एक सेकंड का हो कि उसके आधे सेकंड पौने सेकंड का हो जो भी हो समझ में आए, अपने पास वो गिनती का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन सप्तम गुण स्थान का जो काल है जिसमें बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं होते वो शुद्धोपयोग का है। लेकिन इसके अलावा ये अर्थ गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा परिणति में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना जो शुद्ध परिणति है उसको भी शुद्ध उपयोग शब्द से बोला गया। और अभी डॉक्टर साहब ने जो प्रवचन सार के यहाँ जो खुलासा किया था, समाधि है, समता है, सामायिक है, तो ये वितरांग भाव है, ये सब शुद्ध उपयोग के नामांतर है। इस तरह हमें कहाँ किस अर्थ में उसका प्रयोग किया है ये समझना चाहिए, और अपन को भी जीवन में व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कोई बहुत से ऐसे प्रसंग बनते हैं जिसमें अपने को कोई अटैचमेंट नहीं है। अब गुजरात में किसकी सरकार बनेगी है, इससे आप लोगों को तो हो सकता है गुजरातियों को इंटरेस्ट थोड़ा बहुत, लेकिन अब जो बिल्कुल ही समझ लो आसाम वाला है, जो वहीं पैदा हुआ है वहीं की कल्चर वाला है, एमपी वाला है, उसको अरे गुजरात गुजरात छोड़ो, प्याज के भाव घट गए कि प्याज के भाव बढ़ गए, बोलो कांदा है, अरे न्यूज में आ जाए कि प्याज के भाव 60 रुपए किलो हो गई या 70 रुपए किलो हो गई, अपने कोई विकल्प खड़ा होता है कुछ तरंग वो बढ़ रहे हैं बेकार, बोलो मोबाइल को लगा 10 रुपए किलो हो जाए 2 रुपए किलो हो जाए किसानों को खेत में खींचना पड़े तो अपने को कुछ फर्क पड़ता है, इसका नाम निर्विकल्पता। बात समझ में आई, जो जिसने समझ लो अपना आदत बना लिया सफेद कपड़े पहनने का, पजामा कुर्ता है धोती कुर्ता जो भी हो, तो पंडित जी आप निर्विकल्प हो गए, सभी कल
मैं तो दोनों हूँ, मैं विकल्प भी हूँ प्रविकल्प भी हूँ। तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ब्रह्मचारी दीदियाँ हैं, सफेद साड़ी पहनती हैं, बस और कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो वो दो रंगों की अपेक्षा भी सब में विकल्प है, उन्हें चुनाव नहीं करना, च्वाइस करने में राग द्वेष काम करते, ये अच्छी ये बुरी, ये कलर अच्छा ये बुरा, ये डिजाइन अच्छी ये बुरी, ये अच्छी नहीं लग रही, ये डल है, ये डार्क है, ये ऐसे असंख्यातों को कलर होते हैं, समझ में आया ना। तो जिसे रंगीन कपड़े पहनना है वो निर्विकल्प नहीं हो सकता। वास्तव में देखा जाए जिसे कपड़े पहनना है वो निर्विकल्प नहीं हो सकता। उस लेडी मुनियों के स्तर की निर्विकल्पता की बात करता हूँ। ऐसा प्रयोग इसमें देखो, कहाँ तक है अपना भाई, 8 बजे तक है ना, 8 बजे तक। आत्मद्रव्य विकल्प नय से बालक कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुष की भांति सविकल्प है, और अविकल्प नय से पुरुष मात्र की भांति अविकल्प है। अब उधर भी द्रव्य नय में भी अभेद और भेद की बात थी, और यहाँ भी भेद और अभेद की बात है, लेकिन वो अभेद भेदों में व्याप्त होने वाला अभेद है, गुण पर्यायों में अखंड पने व्याप्त एक सत्ता। और यहाँ पर भेद को गौर करके जितने सारे भेद गर्भित हैं, ऐसे अभेद स्वभाव मात्र को देखना। जैसे मान लीजिए जनसंख्या है, वो पॉपुलेशन वो गिनती होती है ना, तो उन्होंने कहा कि कितने हैं, तुमना मेरे 125 करोड़ भारतवासी, अब तो 132 हो गए होंगे, हैं 125 तो वो पिछली जनगणना का फिगर था, मेरे 125 करोड़ भारतवासी। उसमें कोई विकल्प किया कि स्त्री के पुरुष के बालक के वृद्ध के युवा, कोई विकल्प किया? इसका नाम अविकल्प नहीं, मोदी को बहुत आता अविकल्प नहीं। और फिर वो इतने चतुर हैं कि तत्काल विकल्प नहीं का भी प्रयोग कर लेंगे। हैं कैसे कर लेते हैं? हमारे देश में 35% से ज्यादा, कितना 65% से ज्यादा, उनकी 65 युवा लोग, 35 साल तक की उम्र वाले लोग 65% हैं। तब उसने युवा देख लिए, तो बालक युवा और वृद्ध में से एक भेद खड़ा कर दिया। आत्मा में कैसे लगाए इसको? बिना आत्मा में लगाए अकेले मोदी का उदाहरण देने से क्या फायदा है? बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा, बहिरात्मयम करयात्म पर मातम जीव श्रद्धा है, ये क्या हुआ? ये विकल्प नहीं कर, क्योंकि ये चीजें सर्वथा उड़ाने लायक नहीं है। शास्त्रों में देखा जाए तो कोई भी वक्ता जिस युग में और जैसे श्रोताओं के सामने बोल रहा है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेत्री गौतम गुरुदेव ने इतना भजन पर्याय से भिन्न द्रव्य की हो या पर्याय को गौण करना उससे क्यों दिया? क्योंकि द्रव्य दृष्टि की बात ही नहीं थी दुनिया में, कहीं नहीं थी, जहाँ है वहाँ भी नहीं थी। क्या? जहाँ है मतलब अपने समय सार इत्यादि ग्रंथों में, योग काल में, समय काल में, परमात्म प्रकाश में, ये जो अध्यात्म शैली के ग्रंथ हैं, तो भी समाज में इनका पठन पाठन लगभग नहीं के बराबर था। और था भी तो युवल जी ने एक बहुत बढ़िया कमेंट लिखा है कि पूज्य गुरुदेव श्री के पहले समाज में आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, लेकिन चिंतन में अध्यात्म नहीं था। वही पक्के त्यागवादी है। फिर से क्या बोला? आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, हर समय साल पढ़ा जाता था, बहुत से महापुरुष नाम लेने की जरूरत नहीं है,
शीतल प्रसाद जी तो काफी प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए, हम अपने बुंदेलखंड में बलि जी हुए, कुछ हुए सहजानंद जी हुए, तो पढ़ते थे ग्रंथ वगैरह। लेकिन जो दृष्टि के विषय पर सर्जिकल स्ट्राइक करके मिथ्यास को बिल्कुल उसके कैंसर का ऑपरेशन कर देने की जो कला गुरुदेव से उदित हुई, वो बात अनिश्चय में से ऐसा है, शुद्ध में से ऐसा है। ग्रंथ संग्रह में लिखा है कि सर्वे शुद्धा शुद्ध बनाया, तो शुद्ध में से सब उन्हें तो भजन बना दिया। मम स्वरूप है सिद्ध समान, हमें तो शक्ति को ज्ञान निधान। लेकिन जो वो उनकी परिणति क्या थी उससे अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, कि उन्हें उसका जोर था लेने का, अपन क्यों उसमें पढ़े। लेकिन इस कॉमन जो समाज की बात है, हमने भी ये गीत बहुत गाया, एक जो मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो आध्यात्मिक गीतों का रिवाज तो था, लेकिन चिंतन में अध्यात्म यानी आत्मा का रस नहीं था, इसलिए दृष्टि प्रधान कथन इतने ज्यादा आए। अब वो सुनते सुनते अपनी ऐसी आदत हो गई कि पर्याय है ही नहीं, अब मामला उलट गया, थोड़ा बहुत दृष्टि खाई, अब प्रमाण प्रधान कथनों की ज्यादा जरूरत होने लगी। और जैसा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो अपने आप न्याय के शिविर, कर्णानुयोग के शिविर, पंच परावर्तन, जीव समाज, किसी देवलाली के वायुमंडल में ये सब चीजें भी होने लगी। कोई भी चीज फालतू नहीं है भैया, है ये बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा ऐसे भेदों से देखना, कि भेद को मुक्त करके आत्मा को देखना, ये विकल्प ने का प्रयोग है। और अभिकल्प ने की बात है कहीं से नाला में है, चेतन को है उपयोग रूप बचो गया था। अब वो बहिरात्मा है जो अंतरात्मा है जो परमात्मा है, ये भेद करने की जरूरत ही नहीं है। उपयोग लक्षण तो एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्री संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त सब में विराज। अभी आजकल नाइटम में कार्तिक से अंतरिक्षा, वो मुझे पद्यानुवाद सरोवर के सेकंड पार्ट में निकाली कार्तिक से अंतरिक्षा का अनुवाद, तो मैं लोक अनुप्रेक्षा के प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि सारा गोमत साल उसमें भर लिया, लभ्य पर्याप्त कौन होता है, पर्याप्त कौन होता है, अपर्याप्त कौन होता है। मुझे चीज नई तो नहीं है, सब ग्रंथ में थी, साथ में नरक में नायकी की उत्कृष्ट अवधारणा 500 धनुष है और आयु 33 सागर की, और उत्कृष्ट अवधारणा 500 धनुष और सर्वात सिद्धि में एक हाथ की अवधारणा है और आयु 33 सागर। अवधारणा से क्या होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे खजूर है कि नहीं, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो ऐसा है। इसमें आश्चर्य हुआ पंछी कैसा है, उसमें 50 भाषाएं जो है लोक अनुप्रेक्षा में चारों गतियों का अवधारणा है, आयु है, भेद प्रभेद है, सबका वर्णन। तो ये अभूतार्थ है, ये भूतार्थ है। चौधरी जी माता जी की का देखना, कमलनी और पानी के संयोग को देखो तो भूतार्थ है, ऐसा है। लेकिन जिसका लक्ष्य करना है, जिसका अवलंबन करना है, ऐसे भगवान आत्मा में नहीं हो गया। देखो यहाँ विकल्प का अर्थ भेद है और अविकल्प का अर्थ अभेद है। जिस प्रकार एक ही पुरुष बालक जवान और वृद्ध इन अवस्थाओं का धारण करने वाला होने से बालक जवान एवं वृद्ध ऐसे तीन भेदों में विभाजित किया जाता है। और बहुत भी बहुत से होते हैं, मुख्यतया ये तीन ही रखते हैं। उसी प्रकार भगवान आत्मा एक अभेद होकर भी ज्ञान दर्शन आदि गुणों मनुष्य त्रयंत्र नारद देव आदि अथवा बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा आदि पर्याय के भेदों में विभाजित किया जाता है। देखो सत्रह सूत्र की शैली उपयोगो लक्षणम है, ये कौन से नए का प्रयोग हुआ, अभी कल से नए का। फिर दूसरा सूत्र क्या आया इसके बाद? दूसरा सूत्र कौन सा है? सदेदो अस्य चतुर्वेदा। और एक और है ना जिसके फिर बाद में वो आता है संसारिणो मुक्ताश्च, चार में आया ना, जीव संसारी और सिद्ध, ऐसे दो भेद वाले हैं। ये कौन से नए का प्रेम हुआ? ये विकल्प खड़ा किया, यानी भेद और विकल्प दोनों पर्याय बाकी है। इसलिए ज्ञान का स्वभाव सविकल्प कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान प्रत्येक पदार्थ को अन्य पदार्थों से भिन्न ऐसा जानता है। कपड़े को कपड़ा जानेगा तो लोहा नहीं है, लकड़ी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, ऐसा जानेगा। तो अकेला कपड़ा के रूप में जाना ना, तो ये भेद करके जाने। और दर्शन में किसी पदार्थ का स्वरूप ग्रहण में नहीं आता, सत्ता मात्र ग्रहण में आती, तो वो निर्विकल्प कहलाता है। तो दर्शन और ज्ञान की निर्विकल्पता और सविकल्पता अलग चीज है, अनुभूति की निर्विकल्पता सविकल्पता अलग चीज है, राग द्वेष के विकल्प और वितरापता की निर्विकल्पता वो अलग चीज है। समझ में आया? यहाँ यहाँ जे जे योग्य थे कहाँ समझ लू थे। जिस प्रकार बालक जवान एवं वृद्ध अवस्थाओं में विभाजित होने पर भी वह पुरुष खंडित नहीं हो जाता, उम्र के तो समझ लो बहुत से पड़ाव हैं, अजीब कहने के लिए हर दिन नया दिन होता है, हर पल नया पल होता है, जो आता है समय काल द्रव्य में परिणमन है, समय नए समय होता है, वो पहले कभी आया नहीं और अब दोबारा कभी आएगा नहीं। आज कौन सी तारीख है? 28 अक्टूबर 2017। इसके पहले अनंत काल में भी आई नहीं और अब अनंत काल तक आएगी नहीं। हर चीज नई होती है, तो हमारी उम्र का भी प्रतिदिन का हिसाब किताब नया नया होता है, लेकिन व्यक्ति अखंड बने उस उम्र के प्रवाह में अखंड बना रहता है, ऐसा है। ये अखंडता लक्ष्य करने लायक है। रहता तो वह एक अखंडित पुरुष ही है, और भी देखिए ना, कोई नाटक सिनेमा वगैरह में काम करते हैं, अपने जो एक्टर लोग रहते हैं, नाटक कलाकार होते हैं, तो जिंदगी में सैकड़ों रूप धारण करते हैं, कभी डाकू बनते हैं, कभी चोर बनते हैं, उम्र के हिसाब से उनको रोल मिलता है, पहले हीरो बनते थे, हीरो के बाप बनते समझ में आया ना। लेकिन तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार से अभिनय करने पर भी वो व्यक्ति एक रहता है। तो अपन सब लोग जीवन में इसको जानते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसे अपने में देखना चाहिए, बस इतनी सी बात है। सद्भाव संबद्ध उत्पाद, उसी प्रकार ज्ञान दर्शन आदि गुणों एवं नरक नरक आदि अथवा बहिरात्मा भी पर्यायों के द्वारा भेद को प्राप्त होने पर भी भगवान आत्मा अखंड ही रहता है। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि द्रव्य में और अविकल्प में, इसको जरा ध्यान से सुनना भाई सभी लोग हैं, द्रव्य में और अविकल्प में तथा पर्याय में और विकल्प में क्या अंतर? वैसे तो ये दोनों जोड़े एक से मालूम पड़ते हैं, परंतु गहराई से विचार करने पर ऐसा लगता है कि द्रव्य में आत्मा का चिन्ह मात्र धर्म बता रहा है। चैतन्य सामान्य से व्याप्त बताए थे ना अनंत धर्म, तो वो चैतन्य सामान्य है, जो कि अनंत धर्मों में व्याप्त है, वो द्रव्य में का स्वरूप है। और अविकल्प में आत्मा की गुण पर्यायों में एक अभेद रूप से व्याप्त होने की योग्यता को वह खंडित नहीं होता, भेद होने पर भी खंडित नहीं होता, उसकी अखंडता को बताता है। वहाँ चिन्ह मात्र को देखना है, गुण पर्याय में व्याप्त रहने की योग्यता देखना है चिन्ह मात्र, और यहाँ अखंडता को देखना, एकता और अखंडता, ठीक है। अर्थात उसके अभेद रूप धर्म का वाचक है। इसी प्रकार पर्याय में आत्मा के ज्ञान दर्शन गुणों को बताता है और विकल्प में उसकी पर्याय रूप भेद रूप योग्यता को बताता है। तो थोड़ा बारीक अंतर है। फिर इसके बाद में चार में आए हैं नाम स्थापना द्रव्य और भाव, उनकी चर्चा तो अपन संकेत में समझ चुके हैं। नेक्स्ट पीरियड जब होगा कल तो अपन 16 नंबर और 17 नंबर सामान्य नए और विशेष नए इनके आधार से अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया इसलिए यही विराम लेना उचित है।
एक प्रकार है जो सारे के स्वभाव हो गए हैं।